प्रिय श्रोताओ नमस्कार। हमेशा की तरह आपका मनपसंद बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी पहला थिस्सलुनीकियों नामक पत्रिका गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओ हम विश्वास करते हैं कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने इस बाइबल अध्ययन को सुने और जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रस्तुत है आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों को बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नए नियम की पुस्तक में से पहला थिस्सलुनीकियों की पत्रिका अध्ययन कर रहे हैं जिसे पौलुस ने लिखा है, और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, विशेष करके हमारे उन श्रोता भाई बहनों के जीवन में अपने आशीष दे ताकि प्रत्येक वचन जो आज रेडियो के माध्यम से उन तक पहुंचता है उनके जीवन में कार्य कर सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं। प्रभु जी, उन्हें अपनी शांति प्रदान करें, उनके जीवन को स्पर्श करें, आज के वचन के द्वारा उनसे बोले और बातचीत करें, उन्हें धैर्य और हिम्मत प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इन दिनों थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 12 और 13 पद को पढ़ेंगे जहां पर इस प्रकार से लिखा है, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरें। ध्यान दीजिए, लिखा है तुम्हारा प्रेम बढ़े। बढ़े अर्थात बुद्धिमान हो, प्रेम अर्थात निस्वार्थ प्रेम। आज जब हम संसार की ओर अपनी नजरों को उठा करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि लोग स्वार्थ से भरे हुए प्रेम को दर्शाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है निस्वार्थ प्रेम। प्रेम कर्मों से प्रकट होता है, प्रेम का परिश्रम, यह अनुराग नहीं है, यह अन्यों का सक्रिय कल्याण करता है। जी हाँ, प्रेम एक उद्देश्य के निमित्त है, वह अपने आप में अंत नहीं है, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि पवित्रता में निर्दोष ठहरे। उनके परस्पर प्रेम का अंत यह हो कि वे पवित्रता का गुण विकसित कर लें। यदि आपको न्यायालय में विश्वासी होने के लिए दोषी ठहराया जाए तो क्या उनके पास प्रमाण होगा? हम एक दिन प्रभु यीशु के समक्ष खड़े होंगे और वह हमारे कामों को परखेगा। आप डरेंगे, परंतु वह हम विश्वासियों के गुणों को प्रतिफल के लिए परखेगा। और मेरे मित्रों, आज आपका जीवन भी कैसा है उसको देखने की आवश्यकता है। जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, मेरे विचार में अधिकांश विचारक स्वीकार करेंगे कि यह पद प्रकट करता है कि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा, तब उसके साथ सब पवित्र जन होंगे। इस पद से यह भी स्पष्ट होता है कि वह तब तक उन्हें प्रतिफल नहीं देगा जब तक कि वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने नहीं आएगा। तथापि हम में से अनेकों का यह मानना है कि विश्वासी उसके इस आगमन से पूर्व प्रभु यीशु के न्यायालय में अर्थात न्याय आसन के सामने उपस्थित होंगे। जब वह महाक्लेश से पूर्व कलीसिया को उठाने आएगा और फिर महाक्लेश के युग के अंत में वह पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करने को आएगा। अतः एक प्रश्न का उठना स्वाभाविक है, वह हमें कब परमेश्वर के समक्ष पवित्रता में निर्दोष ठहराएगा? क्या यह उस समय होगा जब वह कलीसिया को संसार में से उठा लेगा, या जब वह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा तब? इसका उत्तर इस वाक्यांश की समझ पर आधारित है। तब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए। आए शब्द इसके लिए विभिन्न यूनानी शब्दों का उपयोग किया गया है। पहला शब्द है प्रकट होना अर्थात चमकना। राजा जेम्स संस्करण में इस शब्द का अनुवाद प्रकट किया गया है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। प्रभु यीशु बेतलेहम में शिशु रूप में प्रकट हुआ, यह उसका चमकना था, यह उसका प्रकाशन था। यही शब्द उसके आगमन के लिए काम में लिया जा सकता है, यह उसका चमकना, जी हां प्रकाशन होगा। कलीसिया को उठाने के लिए उसका प्रकाशमान होना या राज्य की स्थापना करने प्रकट होना, तीनों शब्दों का भावार्थ यही है कि वह चीरता हुआ आएगा, चमकता हुआ आएगा, उसकी वास्तविक उपस्थिति यही होगी। मेरे मित्रों, दूसरा यूनानी शब्द है पर्दा हटाना। यही नाम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को दिया गया है। उसके प्रथम आगमन को पर्दा हटाना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बेतलेहम में उसके जन्म के समय उसकी महिमा मानवीय देह द्वारा ढांक दी गई थी। यह वह महिमा थी जिसे इसराइल शकीनाह कहता था, जो मंदिर में महापवित्र स्थान में थी, जहां केवल महायाजक जा सकता था। परम पवित्र स्थान पर भारी पर्दा पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर था तब उसकी महिमा चमकती नहीं थी, वह मानवीय देह में ढकी हुई थी। जब वह दूसरी बार आएगा तब उसकी महिमा चमकेगी। अतः यह शब्द उसके दूसरे आगमन के संबंध में है। और अब हम देखते हैं तीसरा यूनानी शब्द है उपस्थिति, जिसे सामान्यतः उसका आना कहा गया है। आपके स्वागत में कहा जाता है, हम आपके आने के लिए आपके आभारी हैं, आप तो वहां पहले से उपस्थित हैं और इस कारण आएंगे कैसे? उसका वास्तविक अर्थ है हमारे मध्य उपस्थिति अर्थात हमारे मध्य उपस्थित होने के लिए। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस लिखता है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार से तुम सदा आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 19 पद में, और इस पद में हम इस यूनानी शब्द उपस्थित पर ध्यान दे रहे हैं जिसे आए अनुवाद किया गया है। अतः हमारा प्रभु यीशु आए, इसका संदर्भ उस तथ्य से है जब विश्वासी उसी पल जब हवा में उठाए जाएंगे प्रभु यीशु के साथ उपस्थित होंगे। वह हमें महिमामय घर ले जाएगा, वह स्थान जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। अतः प्रभु का यह आगमन पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए अपने पवित्र जनों के साथ आना नहीं है, परंतु हमारे स्वर्ग जाकर परमेश्वर पिता की उपस्थिति में आने का है। यही विचार पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 19 पद में व्यक्त है। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम भी न होगे? मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हमारी अध्ययन श्रृंखला में आज अध्याय 4 का आरंभ होगा जिसका विषय है मसीह का आगमन, एक शोधनकारी आशा या पवित्र होने की आशा, और मसीह का आगमन शांतिदायक आशा है। तो आइए हम देखें विश्वासियों का आचरण। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। इस अंश की शिक्षा है कि विश्वासी मसीह के आगमन के प्रकाश में इस संसार में कैसा चाल चलना सीखें या कैसे चाल चलन को रखें। यह इन 2 शब्दों चाल चलना में निहित है। ये शब्द यहां पर और फिर पद 12 में आए हैं। यह प्रभु यीशु के आगमन की आशा का व्यवहारिक पक्ष है। हम उस दिन की बाट जोहते हैं जब प्रभु से भेंट करने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे, परंतु मेरे मित्रों, तब तक हमारे पांव पृथ्वी पर हैं और हमें चलना पड़ेगा। हमें इस प्रकार की चाल चलना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। लिखा है, जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है वैसे ही और भी बढ़ते ही जाओ। जी हाँ, हमें उन्नति करना है, हमें अनुग्रह और प्रभु के ज्ञान में बढ़ना है। विश्वासी का चाल चलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्मशास्त्र के अनेक अंशों में इस बात पर बल दिया गया है और यहां भी इसी बात पर बल दिया जा रहा है। विश्वासी जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकता, उसे वही करना है जैसा प्रभु यीशु चाहेगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय के 2 पद में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। मेरे मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर हम देखते हैं कि चाल चलन के बारे में पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों को कुछ आदेश देता है। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने भी कुछ आज्ञाएं दी हैं जिनमें कुछ नई आज्ञाएं भी हैं। मैं अति सावधानी पूर्वक कहता हूं कि 10 आज्ञाओं का पापी के उद्धार से कोई संबंध नहीं है और न ही वे मसीही आचरण का मापदंड है। मेरे मित्रों, फिर से सुनिए, मैं अति सावधानी पूर्वक कहता हूं कि 10 आज्ञाओं का पापी के उद्धार से कोई संबंध नहीं है और न ही वे मसीही आचरण का मापदंड है। 10 आज्ञाओं का उद्देश्य है कि एक शिक्षक की नाई हमें हाथ पकड़कर क्रूस के निकट लाए और कहे, हे बालक, तुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। 10 आज्ञाएं एक प्रकार का दर्पण है जो दर्शाती है कि हम पापी हैं। दस आज्ञाएं हमारे उद्धार के लिए नहीं दी गई थी, वे तो इसलिए दी गई थी कि हम स्वयं को देख पाएं कि हम पापी हैं और हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यह उनका उद्देश्य था। परंतु विश्वासियों के लिए भी आज्ञाएं हैं और मसीही आचरण का जो स्तर वे निर्धारित करती हैं वह दस आज्ञाओं से कहीं ऊंचा है। अध्याय 5 में हम विश्वासियों के लिए 22 आज्ञाओं को देखेंगे। मेरे प्रियो, अब एक प्रश्न स्वाभाविक ही उत्पन्न होता है, यदि मनुष्य 10 आज्ञाओं के पालन में चूक जाए तो वह उच्चतर आज्ञाओं का पालन कैसे करेगा? बाइबल स्पष्ट वर्णन करती है कि मनुष्य 10 आज्ञाओं के पालन में चूक गया, इसराइल इनके पालन में खरा नहीं उतरा, जैसा पत्रस ने स्वीकार किया है प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 7, 10 और 11 पद में। तब पत्रस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जो न हमारे बाप दादे उठा सके थे और न हम उठा सकते हैं? हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। अब यदि 10 आज्ञाओं के पालन में हम चूक गए तो हम मसीही आचरण के ऊंचे स्तर की आज्ञाओं के पालन में कैसे सफल होंगे? मनुष्य अपनी क्षमता में तो सफल नहीं हो सकता है, केवल अंतरवासी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही मनुष्य ऐसा कर सकता है। देखिए पद 8 में क्या लिखा है, तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। पौलुस ने विश्वासियों को कुछ आज्ञाएं दी हैं। हम विधि विरोधी नहीं हैं, हमें अनुशासन का पालन करना है और प्रभु यीशु की आज्ञा मानना है, उनमें प्रेम का संबंध होना है। हमारी प्रेरणा का स्रोत प्रेम है। योहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जी हाँ, यह बहुत ही स्पष्ट है, यदि हम प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और एक दूसरे से प्रेम भी करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात वे विचार से बचे रहो। ध्यान दीजिए, पवित्र बनो यह एक प्रभावी शब्द है, परंतु मुझे खेद है कि हम इसे बहुत गलत समझते हैं। यदि आप धर्मशास्त्र में देखें तो पाएंगे कि इसके अनेक अर्थ हैं। जब यह प्रभु यीशु के संबंध में काम में लिया जाता है जैसा यहां है, तो इसका अर्थ है कि वह हमारी पवित्रता बनाया गया है। आप इसमें और कुछ नहीं जोड़ सकते। अतः इसका अर्थ यहां पाप रहित अवस्था में नहीं है, परंतु यह कि हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। उदाहरण के लिए शमौन पत्रस कहता है कि परमेश्वर के पवित्र जन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहते थे, परंतु इस पवित्र जनों में कुछ का जीवन ऐसा था कि आपको उनके पवित्रता पर संदेह होगा। मूसा, जिसे हम उदाहरण स्वरूप लेते हैं, कि एक हत्यारा था। दाऊद, जिसने अनेक सुंदर भजन लिखे, वह भी एक हत्यारा था, परंतु वे पवित्र अर्थात पृथक थे, अलग किए हुए लोग थे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के लिए अलग किया गया था। विश्वासी का पवित्र होना परमेश्वर के आत्मा का काम है। हमें इसके 3 गुना परिप्रेक्ष्य को देखना होगा। यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब स्थान पवित्रीकरण देखते हैं, अर्थात मसीह हमारी पवित्रता बनाया गया। हम उस प्रिय में ग्रहण योग्य हैं और हम प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले जितना उद्धार पाते हैं उससे अधिक उद्धार बढ़ा नहीं सकते। हम अपनी योग्यता के कारण नहीं, परंतु मसीह द्वारा हमारे लिए किए गए काम के कारण ग्रहण योग्य ठहरते हैं। अवस्थान पवित्रीकरण प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त सिद्धता है। मेरे प्रियो, व्यवहारात्मक पवित्रीकरण में हम पाते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के काम द्वारा चाल चलन की पवित्रता। यह व्यवहारिक पवित्रीकरण इस पापी देह में हमारे रहने तक कभी पूर्णता प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि हम मसीह यीशु के पास नहीं पहुंचते या नहीं आ जाते। मेरे प्रियो, यही कारण है कि आज मुझे और आपको अपने व्यक्तिगत जीवनों को झांक कर देखने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन किस प्रकार के हैं। क्या हम अपने जीवन में पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं या हम पाप की ओर और भी दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। आज पौलुस इस वचन के द्वारा हमें स्मरण दिलाता है कि हम परमेश्वर की निकटता में आए और अपने जीवनों को जांचें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने और उसको आदर दें। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा। यीशु ने कहा जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, आ आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा।
बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूं।